नमस्ते, रिको स्टडी में आपका स्वागत है।
नमस्ते।
आज हम आपके लिए अनुराग पाठक की बहुत ही प्रेरणादायक किताब ट्वेल्थ फेल के कुछ शुरुआती हिस्सों पर एक गहरी चर्चा करने जा रहे हैं।
बिल्कुल, ये मनोज कुमार शर्मा की सच्ची कहानी है जो चंबल के एक छोटे से गांव से निकलकर आईपीएस अफसर बने।
लेकिन आज हम उनकी सफलता पर नहीं बल्कि उस चिंगारी पर बात करेंगे जो एक असफलता की राख से पैदा हुई थी।
हाँ, हमारा मकसद आज सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक लड़का जो 12वीं में मतलब पूरी तरह नकल के भरोसे था,
हाँ,
वो देश की सबसे मुश्किल परीक्षा पास करने का सपना देखने की हिम्मत कहाँ से लाता है।
तो चलिए कहानी की पहली परत खोलते हैं। ये बात है मार्च की एक सुबह की। मनोज अपनी 12वीं के गणित की परीक्षा के लिए तैयार है।
और तैयार होने का मतलब यहाँ पढ़ाई करना नहीं है।
बिल्कुल नहीं, तैयार होने का मतलब है कि उसे पता है कि नकल कहाँ से और कैसे करनी है। गणित से तो उसका मतलब दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था।
और यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये कोई व्यक्तिगत धोखाधड़ी नहीं थी। उसका जो स्कूल था, जोरा का गांधी विद्यालय,
हाँ,
वो तो नकल का एक संगठित केंद्र था।
मतलब एक पूरा सिस्टम बना हुआ।
यहाँ बिल्कुल, गणित के जो टीचर थे दुबे जी, उन्होंने तो बाकायदा मैदान में टेंट लगाकर एक साथ नकल करवाने का पूरा इंतजाम कर रखा था।
सोचकर भी अजीब लगता है कि टीचर खुद नकल का नेतृत्व कर रहे हैं।
यही उस इलाके की शिक्षा व्यवस्था की असलियत थी। पास होने का मतलब सीखना नहीं, बस एक डिग्री हासिल करना था।
खैर, तो परीक्षा शुरू होती है। दुबे जी ब्लैकबोर्ड पर पहला जवाब लिखते ही हैं कि एक सफेद बुलेरो गाड़ी आकर रुकती है और यहीं कहानी का पहला बड़ा ट्विस्ट आता है।
हाँ, उस गाड़ी से एक युवा और बहुत रौबदार एसडीएम राघवेंद्र सिंह पुलिस टीम के साथ उतरते हैं।
और मनोज के लिए ये शायद पहला मौका था जब उसने सत्ता का ऐसा रूप देखा था।
बिल्कुल, गांव की छोटी मोटी राजनीति से बिल्कुल अलग, ये व्यवस्था की असली ताकत थी। एक अफसर आता है और सालों से चल रहे नकल के उस पूरे तंत्र को मतलब मिनटों में तहस नहस कर देता है।
दुबे जी और दूसरे टीचर तो भाग खड़े हुए होंगे।
हाँ, और सारी गाइड और पर्चियां जब्त कर ली गईं। वो पूरा नकल का बाजार एक झटके में बंद हो गया।
मनोज को तो उसी पल समझ आ गया कि अब खेल खत्म।
हाँ, अब उसका फेल होना तो 100% पक्का था।
लेकिन यहाँ उसने जो किया वो उसकी उस वक्त की मानसिकता को दिखाता है। उसने हार नहीं मानी, उसने बस अपने उत्तर पुस्तिका को सवालों से ही बार बार भर दिया
और आखिर में परीक्षक के लिए एक नोट भी छोड़ दिया।
मतलब कोशिश में कोई कमी नहीं थी, भले ही वो कोशिश पढ़ाई की ना हो।
और वो नोट क्या था?
उस नोट में उसने अपनी दादी की बीमारी का एक झूठा किस्सा लिखा था और पास करने की गुजारिश की थी।
अच्छा,
ये सिर्फ एक बहाना नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम का प्रतिबिंब है जहाँ प्रक्रिया से ज्यादा मतलब सेटिंग या जुगाड़ पर भरोसा किया जाता है। उसे लगा होगा कि शायद सहानुभूति काम कर जाए।
हाँ, उसकी वो चिट्ठी असल में उसी भ्रष्ट सिस्टम में हिस्सा लेने की एक भोली कोशिश थी जिससे वो बाद में लड़ने वाला था।
और नतीजा?
नतीजा तो वही हुआ जो होना था। रिजल्ट आया और मनोज हिंदी को छोड़कर हर विषय में फेल हो गया।
उसके पिता पर इसका कोई खास असर नहीं हुआ जैसा कि किताब में बताया गया है।
शायद वो जानते थे कि सिस्टम कैसा है। लेकिन असली चोट उसे तब लगी जब उसके चाचा श्यामवीर ने कुएं पर सबके सामने उसका मजाक उड़ाया।
और ये सार्वजनिक अपमान खासकर परिवार से इंसान को अंदर तक तोड़ देता है।
बिल्कुल, ये सिर्फ एक असफलता नहीं रह जाती, यह आपकी पहचान पर एक धब्बा बन जाता है। उस एक पल ने मनोज को ट्वेल्थ फेल का टैग दे दिया था।
तो 12वीं में फेल होने के बाद पढ़ाई का दरवाजा तो लगभग बंद हो गया था।
हाँ, तो ऐसे में इंसान कोई दूसरा रास्ता खोजता है। मनोज के लिए वो रास्ता बना एक पुराना टेम्पो।
ये आइडिया उसके छोटे भाई दीपक का था।
हाँ, लेकिन यहाँ भी परिवार का एक छोटा सा संघर्ष है। पिता ने पढ़े लिखे परिवार की इज्जत का हवाला देकर मना कर दिया।
उनके लिए शायद मेहनत से टेम्पो चलाना पढ़ाई में फेल होने से ज्यादा शर्म की बात थी।
शायद, लेकिन माँ ने उनके जाने के बाद अपने गहने गिरवी रखकर वो टेम्पो खरीद लिया। ये एक माँ का अपने बच्चों के भविष्य पर लगाया गया दांव था।
और ये दांव काम कर गया?
हाँ, शुरुआत में तो ऐसा ही लगा। दोनों भाइयों ने जी जान लगाकर टेम्पो चलाना शुरू किया और करीब एक महीने तक अच्छी कमाई भी हुई। घर में एक उम्मीद की लहर दौड़ गई।
लगा के चलो जिंदगी पटरी पर आ रही है।
लेकिन कहानी हमें बताती है कि सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती, खासकर तब जब सिस्टम आपके खिलाफ हो, और यहीं से अन्याय का अध्याय शुरू होता है।
बागिनी चौराहे पर थानेदार यादव ने उनका टेम्पो रोक लिया।
और ये कोई रूटीन चेकिंग नहीं थी, ये एक साजिश थी।
साजिश किसकी?
बस ऑपरेटरों की। वो टेम्पो को अपने धंधे के लिए खतरा मानते थे और उन्होंने अपने इस काम के लिए सिस्टम के एक पुर्जे यानी थानेदार यादव का इस्तेमाल किया।
अच्छा, तो थानेदार ने क्या किया?
थानेदार ने एक झूठे गवाह दिनेश को खड़ा किया और दोनों भाइयों पर एक्सीडेंट का झूठा केस डाल दिया।
ये तो बहुत ही बुरा हुआ।
और यही मनोज की जिंदगी का दूसरा बड़ा सबक था। पहला, ईमानदारी की ताकत जो उसने SDM के रूप में देखी,
और दूसरा, भ्रष्टाचार की ताकत जो वो अब थानेदार के रूप में देख रहा था।
बिल्कुल, उसका टेम्पो जब्त हो गया और दोनों भाइयों को कुछ घंटों के लिए हवालात में बंद कर दिया गया।
उस हवालात में उसने अपनी लाचारी को, अपनी बेबसी को महसूस किया होगा।
हाँ, उसे समझ आया कि मेहनत की कमाई को एक झूठी गवाही और एक भ्रष्ट अफसर मिनटों में छीन सकते हैं।
इस पूरी तरह टूटी हुई हालत में वो अपने दोस्त राकेश से मिला।
राकेश ने उसे कोई झूठी तसल्ली नहीं दी, उसने दुनिया की सच्चाई बताई, लेकिन साथ ही एक उम्मीद की किरण भी दिखाई।
उसने क्या कहा?
उसने कहा, हमारे यहाँ के SDM राघवेंद्र सिंह बहुत ईमानदार हैं, तुम उनसे जाके मिलो।
मतलब विडम्बना देखिए, जिस अफसर की सख्ती की वजह से वो 12वीं में फेल हुआ,
वही अफसर अब उसकी आखिरी उम्मीद था।
ये दिखाता है कि इंसान को भरोसा आखिर में ईमानदार सिस्टम पर ही होता है।
सही बात है, वो जानता था कि SDM ने जो किया वो नियम के तहत किया था, जबकि थानेदार जो कर रहा था वो सरासर अन्याय था।
तो मनोज हिम्मत करके SDM दफ्तर पहुंचता तो है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो कहेगा क्या।
हाँ, उसे समझ नहीं आ रहा था कि टेम्पो छुड़ाने के लिए सिफारिश मांगे, क्या करे।
और इसी उलझन में वो पर्ची पे लिख देता है, करियर और पढ़ाई पर चर्चा करनी है।
ये एक तरह का मतलब फ्राइडियन स्लिप है। उसका चेतन मन टेम्पो के लिए गया था, लेकिन अवचेतन मन एक बेहतर जिंदगी, एक इज्जत का रास्ता तलाश रहा था।
करियर और पढ़ाई, ये शब्द उसकी दबी हुई ख्वाहिश को दिखाते हैं।
हाँ, कि वो इस टेम्पो चलाने वाली जिंदगी से बाहर निकलना चाहता है।
जब मनोज बाहर इंतजार कर रहा था तो उसकी आंखों के सामने एक लाइव ड्रामा हुआ।
बिल्कुल, SDM राघवेंद्र सिंह उसी भ्रष्ट थानेदार यादव के एक केस की सुनवाई कर रहे थे और मामला लगभग मनोज जैसा ही था।
मतलब थानेदार ने किसी और बेगुनाहों को झूठे केस में फंसाया था।
हाँ, मुकेश नाम के एक आदमी को। और गवाह कौन था? वही दिनेश, पुलिस का मुखबिर, जिसने मनोज के खिलाफ गवाही दी थी।
ओहो,
मनोज के लिए ये सिर्फ एक सुनवाई नहीं थी, ये उसकी अपनी कहानी का दोहराव था। लेकिन इस बार वो पीड़ित के कुर्सी पर नहीं था,
वो एक दर्शक था जो न्याय को होते हुए देख सकता था।
और उसने देखा कि एक ईमानदार और काबिल अफसर क्या कर सकता है। SDM राघवेंद्र सिंह ने अपनी सूझबूझ से 2-3 सवालों में ही गवाह के झूठ को पकड़ लिया।
क्या सवाल पूछे उन्होंने?
उन्होंने बस इतना पूछा, तुमने कहा कि तुमने मुकेश को नरेश के घर से चोरी करते देखा, तुम्हें कैसे पता कि वो घर नरेश का ही है?
सीधा सा सवाल।
हाँ, और गवाह इसी सीधे से सवाल में फंस गया और सच उगल दिया।
यही वो यूरेका मोमेंट रहा होगा मनोज के लिए।
बिल्कुल, उसने अपनी आंखों से देखा कि कैसे ज्ञान, तर्क और पद की सही शक्ति भ्रष्टाचार के पूरे ताने बाने को तोड़ सकती है।
उसने देखा कि सत्ता सिर्फ डराने और लूटने के लिए नहीं होती,
बल्कि बचाने और न्याय करने के लिए भी होती है।
उसे अन्याय को हराने का तरीका देख गया था,
और वो उस पल से इतना अभिभूत हो गया कि जब SDM ने उसे अंदर बुलाया और आने का कारण पूछा,
तो वो अपना टेम्पो छुड़ाने की बात ही भूल गया
और उसके मुंह से बस इतना निकला, सर, मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ।
ये कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है।
अन्याय के अनुभव ने उसे तोड़ा, लेकिन न्याय की शक्ति को करीब से देखकर उसे एक नया मकसद मिल गया।
अब उसका लक्ष्य टेम्पो वापस पाना नहीं था।
नहीं, अब लक्ष्य था उस कुर्सी पर बैठना जहाँ से वो हजारों टेम्पो वालों को ऐसे अन्याय से बचा सके। सपना एक व्यक्तिगत जरूरत से उठकर एक बड़े उद्देश्य में बदल गया।
SDM मुस्कुराए और उसे डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए PSC परीक्षा की तैयारी करने को कहा।
और यही मनोज शर्म के मारे एक छोटा सा झूठ बोल देता है
कि उसने 12वीं पास कर ली है।
वो शायद उस प्रेरणा के स्रोत को ये बताकर निराश नहीं करना चाहता था कि वो तो 12th फेल है।
हाँ, वो झूठ उसकी असुरक्षा भी दिखाता है और उस सपने को किसी भी कीमत पर पकड़कर रखने की उसकी बेताबी भी।
तो अब मनोज के पास एक नया सपना था, एक नया नशा था। वो उत्साह से भरकर अपने दोस्तों राकेश और विष्णु को बताता है कि वो अब डिप्टी कलेक्टर बनेगा।
और यहीं उसे हकीकत की जमीन पर एक और जोरदार झटका लगता है
उसके दोस्त विष्णु की तरफ से।
हाँ, विष्णु जो फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ था, वो जोर जोर से हंसने लगता है
और वो जो कहता है वो किसी भी सपने को कुचलने के लिए काफी है।
उसने कहा, जो लड़का 12वीं पास नहीं कर सका वो डिप्टी कलेक्टर बनेगा, अरे जाके कोई नाश्ते की दुकान खोल ले, वही तेरे बस का है।
ये तंज मनोज का दिल तोड़ देता है।
ये सिर्फ एक दोस्त का मजाक नहीं था।
नहीं, ये उस पूरे समाज की आवाज़ थी जो आपकी काबिलियत आपके रिपोर्ट कार्ड से तोलता है। विष्णु की हंसी कह रही थी कि तुम्हारी औकात एक फेलियर की है
और तुम्हें उसी में रहना चाहिए।
बिल्कुल, विष्णु उस मानसिकता का प्रतीक है जो मानता है कि आपकी पिछली असफलताएं आपका भविष्य तय करती है। लेकिन तभी कहानी में असली हीरो की एंट्री होती है,
मनोज का अनपढ़ दोस्त राकेश।
हाँ, जब मनोज का दिल टूट चुका था तब राकेश ने उसे सहारा दिया
और उसने जो कहा वो शायद इस किताब का सबसे गहरा सबक है।
उसने अपनी भैंस का उदाहरण देते हुए कहा।
हाँ, क्या कहा था उसने?
उसने कहा, ये भैंस भी रोज रोज के अभ्यास से खूंटे से बंधना सीख गई। जानवर भी लगातार कोशिश से सीख जाते हैं, हम तो इंसान हैं, आदमी मेहनत करे तो कुछ भी बन सकता है।
क्या बात है, एक अनपढ़ दिमाग से निकली हुई असाधारण बुद्धिमत्ता।
बिल्कुल, राकेश जो कभी स्कूल नहीं गया वो शिक्षा का असली मतलब समझा रहा है। विष्णु जो पढ़ा लिखा था वो परिणाम पर अटका हुआ था,
जबकि राकेश प्रक्रिया की मतलब लगातार मेहनत की ताकत बता रहा था।
हाँ, विष्णु की हंसी ने जहां मनोज के सपनों को तोड़ा, वहीं राकेश के इन सीधे सरल शब्दों ने उन टुकड़ों को फिर से जोड़कर एक मजबूत नींव रख दी।
और यहीं से मनोज के असली सफर की शुरुआत होती है।
इन शुरुआती हिस्सों में हमने देखा कि कैसे एक लड़का नकल के भरोसे जीता है, फिर व्यवस्था के अन्याय का शिकार होता है,
एक ईमानदार अफसर की शक्ति से प्रेरित होता है और फिर समाज के तंज के बावजूद एक सच्चे दोस्त के सहारे अपने असंभव से लगने वाले सपने पर कायम रहता है।
अगर हम इसे बड़े फलक पर देखें तो ये कहानी दिखाती है कि बड़े सपनों का जन्म अक्सर आरामगाहों में नहीं होता,
बल्कि व्यक्तिगत संकटों और अन्याय की आग में होता है।
बिल्कुल, जब तक सिस्टम हमें व्यक्तिगत रूप से चोट नहीं पहुंचाता, हम उसे बदलने के बारे में शायद ही कभी गंभीरता से सोचते हैं। मनोज की यात्रा इसी का प्रमाण है।
उसे डिप्टी कलेक्टर बनने की प्रेरणा किसी किताब से नहीं, बल्कि एक हवालात और एक ईमानदार सुनवाई से मिली।
तो यहाँ रुक कर सोचने वाली बात यह है कि हम सब अपनी जिंदगी में छोटे बड़े अन्याय देखते हैं, सिस्टम की खामियां, भ्रष्टाचार।
हाँ, और अक्सर हम उसे बस किस्मत मानकर आगे बढ़ जाते हैं,
या फिर हम उस अन्याय को एक व्यक्तिगत चिंगारी बनने देते हैं। मनोज की कहानी ये सवाल छोड़ जाती है कि क्या अन्याय की चोट हमें सिर्फ सिस्टम को कोसने वाला बनाती है, या फिर
उस चिंगारी से आग लगाकर सिस्टम को बदलने वाला बनने की प्रेरणा देती है।
बिल्कुल।
तो अगर आज की हमारी ये चर्चा और ये ऑडियो आपको पसंद आया हो और आप ये पूरी कहानी पढ़ना चाहते हैं,
तो पूरी बुक पाने के लिए नीचे दिए गए बटन से खरीद सकते हैं।
पेमेंट के तुरंत बाद आपको ये बुक इंस्टेंट डाउनलोड हो जाएगी।
फिर मिलते हैं पूरी बुक में। रीको स्टडी के साथ सीखते रहिए।
धन्यवाद।